आपसे निवेदन कर रहा था कि कल इसी बात को दूसरे ढंग से कहा गया, आज इस ढंग से निवेदन किया कि आपके करने वाली बात जो है सत्संग, उसको आप कीजिए, सत्संग से ही सारी समस्याओं का समाधान होगा। और आप विचार करके देखें कि जो चीज सत्संग के द्वारा हो सकती है वो किसी और प्रकार से हो ही नहीं सकती। जैसे विरोध के भय से अगर बच जाए तो बिना सत्संग के बच जाएंगे? बोलो। प्रियजनों के विरोध का जो दुख सताता है, देखिए चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बेपढ़ा हो, चाहे किसी परिस्थिति का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, प्रियजनों के विरोध से कष्ट होता कि नहीं होता? शब्द होता है किसी को होता है, शब्द होता है। अच्छा, जब तक हम निर्मल नहीं होंगे, जब तक हम ये ज्ञान अपने ज्ञान का आदर नहीं करेंगे तो संसार में पर्सनल कुछ नहीं है, तब तक इस योग के भय से बचेंगे क्या? जी नहीं बच सकते ना। अच्छा, नाक बंद करके, कान बंद करके, नाक बंद करके, उल्टे करके किसी और योग्यता से किसी और पर्सन बचेंगे? नहीं बचेंगे। और अगर सत्य को स्वीकार कर ले तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो आप इससे क्या सिद्ध हुआ कि जीवन का जो सत्य है उसे स्वीकार करने से ही ये समस्या हल होगी? आज तक और किसी प्रकार से ये समस्या हल हो ही नहीं सकती। कौन सी समस्या? कि वियोग का दुख न हो, संयोग की दास्ता न हो, संयोग की दास्ता में बंद न जाए। आज हमारी दशा क्या है? जो मिल गया है उसमें बंद गए, जो चला गया उसमें रो रहे हैं। कह रहा है मिले हुए में बंधे हुए हैं और जो चला गया उसे रो रहे हैं। ये दिखा कि मिले हुए की दास्ता में न रहे, चले जाने वाले के विरोध के भय से बच जाए, हम फिर शांति पा जाए, हम जीवन मुक्ति पा जाए, हम निजानंद पा जाए, हम आत्मानंद पा जाए, हम योगानंद पा जाए, ये बिना सत्संग के हो सकता है क्या? अभी नहीं होगा। और सत्संग करें तो कब होगा? जब मान लो तब होगा, अभी होगा, जब मान लो तभी होगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि सत्संग का जो आज गलत अर्थ लगाते हैं, अब जैसे जब आप घर से चले हैं या बैठे हैं तो ये कहेंगे हम सत्संग में गए थे, तो व्याख्यान में आना सत्संग है तो सत्य को स्वीकार करना सत्संग है, और व्याख्यान में रोज आना सत्य को स्वीकार करें तो बेटा हम क्या कहें? बेटा तो कहने की हिम्मत किसी नहीं होगी, संभव है किसी जो कुछ बिगड़े हैं वो भी सुनकर ही नहीं बिगड़े हैं। गलत बातें सुनते सुनते बिगड़ गए, सही बातें सुनते सुनते बिगड़ जाएंगे। बेटा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये निवेदन करूंगा कि अपने करने वाली बात पर हम जब तक जोर नहीं डालेंगे, उसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी।
अपने पर वो अपना शासन नहीं कर सकता है, अपने पर अपना
अभी तो बीस मिनट है।
और
तुम्हें ये आपसे निवेदन कर रहा था कि सत्संग का अर्थ है सत्य को स्वीकार करना। अब सत्य सत्य क्या है जीवन का? जैसे अभी आपसे कहा ना कि बुरा मैं किसी को किसी प्रकार की हानि, देखो भाई अगर मनुष्य सबसे बड़ी सेवा करना चाहे, सबसे बड़ी वो यही है, किसी के प्रति कभी भी बुरा ख्याल भी ना है, बुरा भाव भी ना है, और बुराई न करे, बहुत बड़ी सेवा है। भलाई करना इसका परिणाम है, इसका नतीजा है, लेकिन किसी अपना काम नहीं बनेगा। बुराई रहित होने से संसार की सेवा होगी, भलाई करने से संसार की सेवा होगी, परंतु अपनी सेवा कब होगी? जब हम अभिमान शून्य हो जाए। बुराई नहीं करता हूँ इसका भी अभिमान हो सकता है, उसका भी अभिमान छोड़ दे। भलाई करता हूँ इसका भी अभिमान हो सकता है, उसका भी अभिमान छोड़ दे। तो बुराई रहित का भी अभिमान छोड़ दे, भलाई का भी अभिमान छोड़ दे, तब हमारा संबंध उस अविनाशी जीवन के साथ होगा जिसकी हम सबको मांग है। अविनाशी जीवन उसे नहीं कहते जो अभी न हो, उसे नहीं कहते जो सभी के लिए न हो। अविनाशी जीवन उसका नाम नहीं है जो अभी मौजूद न हो, अविनाशी जीवन उसका नाम नहीं है जो सभी के लिए न हो। अविनाशी जीवन रहने अभी है, तो वो जो अविनाशी जीवन है जिसकी हम सबको मांग है, वो सत्य को स्वीकार करने से ही मिलेगा। तो वो कौन सा सत्य? जो जो पहलू है जो सदैव हमारे साथ नहीं रहेगा उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तुम्हें बुराई रही तो कर भलाई करने से, और जो सदैव हमने वो सिस्टम मिलेगा अच्छा और अपने रहने से। बड़ी गंभीर बात
है,
बड़ी गंभीर बात है। फिर कीजिएगा, जो सदैव है उसकी प्राप्ति हमें कैसे होगी, उसका अनुरोध हमें कैसे होगा, और जो सदैव हमारे साथ नहीं है उससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? तो संस्थाओं से छुटकारा मिलेगा भलाई करने से और बुराई नहीं होने से। लेकिन जो सदैव अपने साथ है वो कैसे मिलेगा? अच्छा होने से, अप्रयत्न होने से। आप कहेंगे दूसरी बात है, अलमी भाई मुक्ति कहने वाले हैं कि नहीं है, बहुत मजा आता है। अचार अप्रयत्न होने से
क्या होता है?
वो जीवन मिलेगा जो सदैव आपके पास है, सदैव आप में है, आपका है, इसको अविनाशी जीवन कहते हैं। अचार अप्रयत्न होने से, अचार होने से संसार का संबंध टूटता है, अप्रयत्न होने से शरीर का तादाद टूटता है। किसी परिश्रम से शरीर का तादाद नहीं टूटता, अप्रयत्न होने से टूटता है। तो अप्रयत्न से शरीर का तादाद टूट जाएगा तब सबको जीवन जो अपना है अपने में है, और सदैव होने से अभी है, और सब प्रकार से निर्विकार है, शुद्ध है, शुद्ध है, नित्य है, जो आप प्रेम सुनाए करते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अप्रयत्न होने से तुम शरीर का साधन जुड़ जाएगा, संसार का खत्म जुड़ जाएगा। अचार होने से तो संसार का संबंध मिल जाए, शरीर का तादाद मिल जाए, तो आपको अविनाशी जीवन की प्राप्ति हो जाएगी।
जाना जाता है
और इसी जीवन के की मांग अपने जीवन में है। तो जहाँ भौतिक बात की पूर्णता होती है वहीं से अध्यात्म बात का आरंभ होता है। भौतिक बात की पूर्णता कौन सी होती है? बुराई रहितों पर भलाई करने से, बुराई रहित होकर भलाई करने से। ये भौतिक बात की पूर्णता है, ये दुनिया के दुनियादारों की बात है, दुनिया में रहने वालों की बात है। बुराई छोड़ दो भलाई करो, बुराई छोड़ दो भलाई करो। अगर दुनिया से ऊपर उठना है तो अचार होकर अप्रयत्न हो जाओ, निर्मम होकर अचार होकर अप्रयत्न हो जाओ। अपने गुणों में से असंगता आ जाएगी, तो निर्ममता, निष्कामता और असंगता, ये तीनों का एक रूप हो जाएगा। निर्ममता से निर्विकारता प्राप्त हो जाएगी, निष्कामता से चित्त शांति प्राप्त हो जाएगी, असंगता से जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और निर्विकारता, चित्त शांति और जीवन मुक्ति, ये एक ही सत्य है, एक ही के तीन तीन संकेत किए गए। निर्मल होने से निर्विकारता मिली, निष्काम होने से शांति मिली, और असंग होने से जीवन मुक्ति मिली। तो जीवन मुक्ति, चिर शांति और निर्विकारता, इसको अध्यात्म जीवन कहते हैं। ये अध्यात्म जीवन का आरंभ होता है कहाँ से? जहाँ से आप अचार अप्रयत्न होते हैं, और जब अध्यात्म जीवन की पूर्णता होती है उसके बाद आस्तिक जीवन का आरंभ होता है, उसके बाद ईश्वरवाद आरंभ होता है। उससे पहले ईश्वरवाद की चर्चा मन बहलाने का उपाय है। अच्छा मेरी बात बताओ, ये जो थोड़ा कठिन की बात हो गई बोलने में, आप लोगों को कठिन तो नहीं मालूम हुई है? क्यों ईश्वरवादी नहीं होना चाहते क्या? अध्यात्मवादी नहीं होना चाहते क्या? खाली भौतिकवादी रहना चाहते हो क्या? देखो भौतिकवाद के बाद बात खत्म हो जाती है, इसलिए कि आपने उस भौतिकवाद को पूरे रूप से अपनाया नहीं है। लेकिन भाई मानवीय फिर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, फिर सुनने का मौका नहीं, तो फिर बात नहीं जाएगी। इसलिए सुन तो लो, भौतिकवाद की जहाँ पूर्णता होगी वहीं से अध्यात्मवाद आरंभ होगा, जहाँ से अध्यात्मवाद आरंभ होगा वहीं से ईश्वरवाद आरंभ होगा, ऐसा नियम है। ईश्वरवाद माने प्रेम का राज्य, भौतिकवाद माने उदारता का राज्य, अध्यात्मवाद माने स्वाधीनता का राज्य। हमको उदारता भी चाहिए, हमको स्वाधीनता भी चाहिए, हमको प्रेम भी चाहिए। और यही मनुष्य के जीवन की के विकास की चरम सीमा है। और इसी में जीवन की पूर्णता है कि प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन उदार होकर संसार के लिए स्वाधीन होकर अपने लिए और प्रेमी होकर प्रभु के लिए उपयोग हो सकते हैं। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? सभी के लिए उपयोगी होना, ये मानव जीवन का लक्ष्य हुआ। और मानव का प्रसार क्या हुआ? सत्य को स्वीकार करना। सत्य को स्वीकार करने से आप सभी के लिए उपयोगी होंगे, बिना सत्य को स्वीकार किए सभी के लिए उपयोगी नहीं होंगे। फिर ये बातें जैसा कि पहले घर में प्रश्न सुना दिया था, जीवन मुक्ति के शक्ति वास्तविक गैर कल्पना नहीं रह जाएगी, वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। अब भाई देखो, इससे आगे की चर्चा कल करेंगे इसी ढंग से। अब पहले अगर जो प्रार्थना कर लिया कीर्तन यहाँ के लोग एक घंटे ज्यादा लगातार सुन नहीं करते भैया। मेरे नाथ अपनी सुधारी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहे सुखी कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राजदेश का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए।
तो 5 मिनट के लिए नींद को छोड़कर, नींद को समय में 5 मिनट का समय निकालकर, ऐसे समय आप ये संकल्प करके सोए कि भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ और मैं संसार की सेवा करूंगा और मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। इतने संकल्प करके आप सो जाए और इतने जगह कथित संकल्प कर लें, मैं भगवान मेरा है, मुझे इसका प्यार चाहिए, मैं संसार की सेवा करूंगा, मुझे भगवान और संसार को कुछ नहीं चाहिए। ये जगते समय भी सोचने संकल्प करने और सोते समय भी संकल्प करने, कितने समय कोई सस्ते होगा, कितने कोई तुम्हारा समय बर्बाद होगा, हम ये तो नहीं कहते कि क्या करें क्या नहीं करें, इतना करें। अगर आप सोते समय ये बात सोचते सोए कि मैं भगवान को प्रेम करूंगा, भगवान मेरे अपने हैं, मैं संसार की सेवा करूंगा, मैं मुझे संसार से कुछ चाहिए, मैं मुझे तो भगवान से चाहिए, ये संकल्प करके सो जाए, ये संकल्प करके जग जाए। और थोड़ी देर बाद जब दिन में संकट हो तब इस बात का डर दे देंगे, हाँ इतना समय बीत गया, अभी भगवान को प्यार नहीं दे सका, अभी संसार की सेवा नहीं कर सका, अभी अपने से अचार नहीं कर सका। इन 3 बातों के नहने से कभी कभी दुखी हो जाया करते, ये प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं, ये प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। राजे ने सुविधा को ले दिया, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि बैठ के माला फेरे, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि पैसा खर्च करे, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप कुछ शारीरिक काम करो, केवल ये कहा कि संकल्प को करो, ये संकल्प करो मुझे भगवान को प्रेम देना है, क्यों भगवान मेरा है, मुझे संसार की सेवा करना है, क्यों संसार से सरलता नित्य संबंध है, ये गली लगा दी समझने के लिए, ये गली में सोचने की नहीं, मुझे भगवान से प्यार करना है, मुझे संसार की सेवा करना है, मुझे संसार से कुछ लेना है, मुझे भगवान से कुछ लेना है, इस बात को पसंद कर लो। ऐसा कहना से ऐसा कहना करे, कहना पसंद कर ले, देखना पसंद कर ले, और जब तक ये तीनों साथ चीजें न मिले तब तक थोड़ा दुखी होना पसंद कर लो। देखो भाई, बिना दुखी हुए किसी को मजा मिला नहीं। जब तक हमारे आपके जीवन में इस बात का दुख नहीं होगा तो हाँ हाँ कितना समय बीत गया और कहीं उससे प्यारा नहीं लगा, इतना समय बीत गया मैंने सेवा नहीं की, इतना समय बीत गया मैं अता नहीं हुआ, इस बात का दुख जीवन में रहना चाहिए। तो दुख से जब दुख रहेगा ना तो मैं गंगा की प्रार्थना, देखिए जिस बात से तो हम दुखी होते हैं ना, यही तुम्हारी प्रार्थना होती है ना, तो सेवा न करने का दुख, प्रेमी न होने का दुख, अचार न होने का दुख दूर में आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आए, जब ये दुख उतना बढ़ जाएगा, जब ये दुख बढ़ता जाएगा तो वह सेवा करने से, प्रेम करने से, चाह रहे करने से कहां तक आती जाएगी। आप जानते हैं एक बड़ा भरी वैधानिक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं वैधानिक बात यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान की जो वेदना होती है यही भविष्य की उपलब्धि होती है। इससे आप जरा हृदय में रखें, हृदय में रखें कहें कि वर्तमान की जो वेदना है वही भविष्य की उपलब्धि है। अगर हमारा जीवन इस बात से दुखी है तो हाँ है जीवन बीता जा रहा है, इन्हीं से प्यार नहीं दे सका, जीवन बीता जा रहा है संसार की सेवा नहीं कर सका, जीवन बीता जा रहा है अचा नहीं सका, तो अचा न होने का दुख, चाह रहित न होने का दुख, प्रेमी न होने का दुख, सेवा न करने का दुख जितना बढ़ेगा उतनी ही सेवा करने की शक्ति मिलेगी, प्रेम करने की शक्ति मिलेगी, चाह रहित होने की शक्ति मिलेगी। आप सपना नहीं, हम जैसा होना चाहें संभव है तो न मिले, हम जैसे कपड़े पहनना चाहें मुमकिन है तो न मिले, हम जैसा घर चाहें संभव है तो न मिले, हम जैसा काम चाहें संभव है तो न मिले, इसमें न मिलना हो सकता है और मिलकर भी छू सकता है, न मिलना हो सकता है और मिलकर भी छू सकता है, लेकिन देश अगर हमारे आपके दिल में इस बात का दर्द है कि कहीं प्यारा न लगने का दर्द है, संसार की सेवा न करने का दर्द है, चाह रहित होने का दर्द है, तो हम सब प्रेमी हो सकते हैं, हम सब सेवा कर सकते हैं, हम सब चाह रहित हो सकते हैं, ये जो हमारी मांग है ये पूरी हो सकती है। आप कहेंगे क्यों गंभीरता से विचार कीजिए, ये मांग क्यों पूरी हो सकती है, ये मांग इसलिए पूरी हो सकती है कि इसी मांग की पूर्ति के लिए इंसानी जिंदगी नहीं, इसी मांग की पूर्ति के लिए कुछ दुख भोगने के लिए तो इससे की जिंदगी भी काफी है। मैं एक बार कश्मीर गया था कि जिनके हमें ठहरा था उनके सिक्के से जितना सुख था हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी जितना सुख नहीं था। आप ताजुब करेंगे उनका सिक्का एक सच्चे जमाने में आठवें रोज की मलाई खाता था, सच्चे जमाने में आठवें रोज की मलाई की बर्फ खाता था और मेटन में बैठकर हला खाने जाता था और अच्छे अच्छे सुंदर सावनी से मिलाया जाता था, बड़े सुंदर कमरे में रखा जाता था, उसके साथ तिथियां रखी जाती थी, तो सुख दुख का भेद तो सिक्के के जीवन में भी है, देवताओं के जीवन में भी है, लेकिन प्रेम की मांग, सेवा की मांग और मुक्ति की मांग इंसानी जिंदगी में और किसी जिंदगी में ये मांग नहीं हो सकती। तो भगवान ने हमारे आपका जो निर्माण किया लेकिन तीन बातों के लिए किया, हम चाह रहे होकर मुक्त हो सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, हम प्रेमी हो सकते हैं, सेवा करके जीवन के संसार के लिए उपयोगी उन्हें तारामद कर सकते हैं, प्रेम करके जीवन के सही के लिए तारामद कर सकते हैं और त्याग करके अचार होकर के जीवन को अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। ये है इंसान तेरी जिंदगी, ये है तेरी शक्ति, और ये तेरा कर क्या सेवा करूंगा, प्रेम करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, यही प्रसार करने से का, और यही सत्य है। आप प्रेम नहीं कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, आप क्या रहे दे सकते हैं। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम में कोई गल चाहिए क्या? प्रेम का मतलब क्या है? किसी का अच्छा लगना, किसी का पसंद आना, ये तो प्रेम है। पसंद आता है तो प्रेम, प्रेम बिना पसंद ना होता है क्या? तो भगवान को पसंद कर लेना, सेवा को पसंद कर लेना, और शांति को पसंद कर लेना, मृत्यु को पसंद कर लेना। तो मृत्यु पसंद करने से मृत्यु मिलती है, भक्ति पसंद करने से भक्ति मिलती है, सेवा पसंद करने से सेवा मिलती है। आप कल सेवा कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मानव
योग प्राप्त हो सकता है। करते हैं हम बोध की चर्चा करते हैं, हम प्रेम की चर्चा करते हैं, उसको प्राप्त नहीं करते। तो क्यों नहीं प्राप्त करते? कि हमारे जीवन में अधिकार लालसा ने इतना घर कर लिया है, इतना घर कर लिया है कि हर एक भाई सोचेगा कि मैं चाहे जैसा हूं पर मेरी धर्म पत्नी तो सती सावित्री के समान हो, और हरेक पत्नी सोचेगी कि मैं चाहे जैसी हूँ पर मेरा पति तो राम के समान हो, मैं चाहे जैसा हूँ मेरा पुत्र तो राम के समान हो। कहने का मेरा तात्पर्य भाई और कुछ नहीं है, ये मांग कोई गलत हो ऐसी बात नहीं है, पर आप अपनी इस मांग में स्वाधीन हैं क्या? हाँ एक बात है कि आप राम जैसे पति हो सकते हैं, आप राम जैसे पुत्र हो सकते हैं, आप दशरथ जैसे पिता हो सकते हैं। तो आप एक बड़े ही हृदय सदमित्र हो सकते हैं, एक अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, एक अच्छे नागरिक हो सकते हैं, एक समाज के एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। इन आप तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई अच्छा ही करे इसमें तो आप स्वाधीन नहीं हुए। और अगर इसमें आप स्वाधीन होते तो आपको कोई बुरा साथी मिलता ही क्यों, आपके साथ कोई बुराई करता ही क्यों? किंतु आपका दैनिक जीवन इस बात को बताता है कि आप इस बात में स्वाधीन नहीं है। तो आज हमसे भूल क्या होती है कि जिसकी जिस बात में हम स्वाधीन हैं उसको तो करेंगे नहीं, और जिस बात में हम पराधीन हैं बोले उसकी आशा रखेंगे। तात्पर्य क्या होता है कि जो करना चाहिए उसके न करने से करने का राग रहेगा ही, करने का राग रहेगा ही, और जब करने का राग रहेगा तो देह का अभिमान गल ही नहीं सकता, और जब देह का अभिमान गल नहीं सकता तो हम काम रहित हो ही नहीं सकते, और जब काम रहित हो ही नहीं सकते तो आप ही बताइए कि देह के सहयोग से किसी वस्तु के सहयोग से कैसे योग प्राप्त हो जाए। किंतु बड़े ही दुख की बात है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आज लोगों ने शरीर के व्यायाम को, देखिए प्राणायाम भी एक व्यायाम है, आसन भी एक व्यायाम है, आप विचार करके देखें ये भी धोती क्या है, ये भी शरीर का ये धर्म है, शरीर की सफाई है। तो हम स्थूल शरीर की सफाई को, स्थूल शरीर के व्यायाम को ही योग मानने बैठे हैं, योग मान बैठे हैं। और जहाँ ये सारी बातें सिखाई जाती है उसका नाम रख दिया जाता है योग आश्रम, वास्तव में है वो देह आश्रम। माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिए, विचार कीजिए, है वो देह आश्रम। तो क्या आप इसका अर्थ ये समझेंगे कि उन बातों की आवश्यकता नहीं है? नहीं भाई, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता है। तो जो शरीर विज्ञान है उसको आप योग विज्ञान कहकर योग का अपमान करते हैं, योग की बेइज्जती करते हैं और अपने को योग से विमुख रखते हैं। राग रहित होने में निर्बल से निर्बल प्राणी भी समर्थ है, लेकिन लेकिन और जितनी आज योग के नाम पर बातें बताई जाती हैं उनमें हर व्यक्ति समर्थ नहीं है, कोई समर्थ है कोई असमर्थ है।